पंडित यानी विद्वान हूं, अथवा पंडित का सही अर्थ तो ये पंडा भेद विज्ञान बुद्धि संजाता यस्य स पंडित मुनि इत्यर्थ। पंडित की सही परिभाषा क्या है कि भेद विज्ञान बुद्धि जिनके अंदर प्रकट हुई है, जो जब कभी निर्विकल्प समाधि में चले जाया करते हैं, ऐसे मुनिराज पंडित कहलाते हैं। इसलिए मरण के भेदों में पंडित मरण किसका कहा? जिस पंडित को आप प्रवचन के लिए बुलाते हैं उसका मरण, वो पंडित मरण नहीं है। पंडित मरण यानी निर्ग्रंथ साधु का जब मरण होता है तो उसको पंडित मरण कहा जाता है। तो ऐसे साधु हो या सूर्य शूरवीर हो, उसको भी लक्ष्मी पसंद नहीं करती। लक्ष्मी किसी से प्रेम नहीं करती, कितनी विचित्र है। शूर पूज्य हो तो भी उसको भी लक्ष्मी चाहती नहीं, लक्ष्मी का किसी से प्रेम नहीं है। देखो अरहंत भगवान जिनकी लक्ष्मी के सामने संसार की सारी लक्ष्मियां फीकी, इतना वैभव उनका, पर जैसे ही वो निर्वाण प्राप्त करने के लिए उधर जाते हैं अपने मोक्ष स्थल पर, जैसे महावीर भगवान 2 दिन पहले समवसरण छोड़ करके इधर पावापुर चले गए, आदिनाथ भगवान 14 दिन पहले समवसरण छोड़ करके पावापुर कैलाश पर्वत पर चले गए। कैलाश कैलाश नहीं है, वो स है, साधु वाला स। और बाकी 22 तीर्थंकर एक एक महीने पहले समवसरण छोड़ करके चले गए, लेकिन समवसरण का वैभव उनके पीछे नहीं गया, वो सारा वैभव वहीं पर विलीन हो गया। जब इतने महान पुण्यशाली तीर्थंकरों का वैभव भी क्षण मात्र में विलीन हो जाता है, फिर लक्ष्मी का किसी से प्रेम है ये कहा ही नहीं जा सकता। पूज्य हो उनको भी लक्ष्मी नहीं चाहती। धम्मिट्ठे धर्म में स्थित हो, धर्मिष्ठ हो, उससे भी लक्ष्मी का प्रेम नहीं होता। और सुवत्त, सुवत्त यानी सुचारित्र जिसका है, सुवृत्त उसकी छाया सुवृत्त बनेगी, की भी होगी इसमें लिखी भी होगी। सुवृत्त यानी सम्यक चारित्र को धारण, सुंदर व्रतों को धारण करने वाले। और सुयण सुजन यानी जो सज्जन है। और महासत्य, महासत्व का मतलब होता है महान पराक्रमी, बहुत बहादुर। बहादुर तो शूर में आ गया, महासत्व का मतलब महापुरुष समझ लो, सत्व का अर्थ जीव होता है, फिर भी टीकाकार ने महापराक्रम से युक्त कहा है। तो इन में से किसी को भी लक्ष्मी प्रेम नहीं करती, लेकिन लक्ष्मी को लोग चाहते हैं। आचार्य महाराज यहाँ पर जीवों को संबोधित करते हुए सचेत कर रहे हैं कि तुम जिसको चाहते हो वो किसी को नहीं चाहती, तुम्हें तो नहीं चाहती और किसी को भी नहीं चाहती, ये ख्याल में रखना। और उसमें वैराग्य भावना में वेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल या का कौन प्यारा, इसका कौन ठिकाना है, आज यहाँ है कल वहाँ है। और क्या है जिसके पास लक्ष्मी आ जाती है वो क्या, उसका करंट बहुत खराब है, वो संपत्ति उतनी रहती धरती पर। देखो आज आपके हाथ में वो नोट कल किसी और के हाथ में चले जाते हैं, लेकिन जिसके हाथ में जाते हैं उसकी चाल बदल देते हैं, और जिसके हाथ से निकल जाते हैं उसकी चाल भी बदल देती। ये हाल है लक्ष्मी। गुरुजी हमारे गुरुजी कहते हैं कि दौलत 2 लातें मारती है, आते समय जो लात मारती तो अकड़ जाता है, जाते समय लात मारती तो सिकड़ जाता है। ये हाल है। अनित्यता का चित्रण है। 12 अनुप्रेक्षाओं के वर्णन का संकल्प लेकर आचार्य महाराज ने पिछली गाथाओं में जो अपन ने कल दोपहर में पढ़ी थी, ये कहा था कि पर्याय रूप से कोई वस्तु स्थिर नहीं है। जो कुछ उत्पन्न हुआ है वह नियम से नष्ट होगा। ये भी कहा कि जन्म मरण से घिरा हुआ है। जन्म हुआ है तो कभी भी मरण हो सकता है। जवानी बुढ़ापे में समाप्त होती है। यौवन का साम्राज्य क्षणिक है, कुछ सालों का राज्य होता है जवानी का, फिर सब ढल जाता है। लक्ष्मी भी नश्वर है, इस प्रकार सभी कुछ तो नष्ट होने वाला है। ऐसा क्या है जो हमेशा टिक जाए? कुछ नहीं। जवानी के बारे में अभी एक दो साल पहले की घटना है। एक फिल्म स्टार हुए हैं जो अभी कच्छ में आकर के अपना एक स्टेटमेंट दे गए थे। उन्होंने अपने उनके उनसे पूछा गया कि आप सदाबहार कैसे हैं, भोजन क्या लेते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं फलों का रस और फल लेना पसंद करता हूँ, बरसों से मेरा यही भोजन रहा है। उनको जब दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला तब उनसे पूछा गया कि आपको कैसा लगता है ये जीवन। उनने उत्तर दिया कि जब उम्र चढ़ती है तब नशा चढ़ता है और जब उम्र ढलती है तब नशा उतरता है। क्या अद्भुत जवाब है। मतलब यही है कि जवानी आती है और उसके बाद फिर चली भी जाती है। तो यौवन जो है वो बुढ़ापे में ढल जाता है। अथिरम परियण शयनम, परिजन और स्वजन भी अस्थिर हैं। आज है कल का क्या ठिकाना। पुत्र कलत्र, पुत्र है स्त्रियां हैं, वे भी नश्वर हैं। बड़ी बड़ी कल्पनाएं करके जो लोग बैठे रहते हैं वो कल्पनाएं कभी कभी पूर्ण नहीं हो पाती। सोचते हैं कि इसको डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, या फिर आईएएस ऑफिसर बनाएंगे, या विदेश भेजेंगे, या ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। पता चलता है कि 8 साल की उम्र में वो बच्चा ल्यूकेमिया से ख़त्म हो जाता है, या और कोई ऐसी भयंकर बीमारी हो जाती है उसमें प्राणांत हो जाता है। उसी प्रकार स्त्रियां और उपलक्षण से पुरुष भी, कोई भी स्थायी रहने वाला नहीं है। और कब किसका डेरा उठ जाए इसका भी अपने को ज्ञान नहीं है। अपन नहीं जानते, जानने वाले जानते हैं लेकिन अपन नहीं जानते कब किसका नंबर आ जाए। सुमित्र लावण्यम, अच्छे अच्छे मित्र भी चले जाते हैं। अपन सोचते हैं कि इससे पहले मेरी आयु पूर्ण हो जाए, मेरे जीते जी ये सुखी रहे। ये सब अपने मोह के कारण, स्नेह के कारण अपन विचार करते हैं, लेकिन कर्मों की गति विचारों से भिन्न होती है। अपने विचार कुछ होते हैं और सोचते कुछ हैं, योजनाएं कुछ बनाते हैं, और यदि कर्म प्रतिकूल होते हैं तो कुछ और हो जाता है। इसी का नाम संसार है। जो चाहते हैं वो होता नहीं है, जो होता है वो चाहते नहीं। ये एक विद्वान ने कहा था, दीपचंद जी ने, कि जो चाहते हैं वो होता नहीं है, जो होता है वो चाहते नहीं है। ये परिणति है संसार की। और लावण्य भी नश्वर है। लावण्य का अर्थ, रूप का अर्थ सुंदरता होता है, लावण्य है ना, उसमें जो कांति रहती, चमक होती है, वो भी नश्वर है। गृह गोहणाई सबम, गृह घर भी नश्वर है। कल दृष्टांत दिया था कि 15 लाख का घर बनाया, बनाते बनाते 4 साल लगे, 7 साल लगे, और एक भूकंप आया, 15 सेकंड में ध्वस्त हो गया। पंद्रह लाख का घर संभव है, 15 साल भी लग जाए बनाने में, ऐसे दृष्टांत भी है ग्रंथों में कि एक सेठ बहुत बड़ा आलीशान भवन बनवाकर उसके एक खंड में बहुत सुंदर चित्रकारी करा रहा था। सवेरे का समय था, सूर्योदय हुआ, ऐसे प्रकाश अंदर आ रहा था, तो कुछ सुनहरे प्रकाश में, लाल लाल प्रकाश में वो चित्र बहुत अच्छे लग रहे थे। सेठ ने पूछा कि कितने दिन में पूरे हो जाएंगे? वो कहता है चित्रकार, 15 दिन लगेंगे कम से कम। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात। उसी समय एक मुनिराज वहां से द्वार आगे से निकले, रास्ते से वो ऐसे देखते हैं, मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाते हैं। अब दिन भर में 3 बार वो मुनिराज मुस्कुरा करके उस सेठ की नजरों के आगे से बढ़ जाते हैं आगे। सेठ को लगता है कि क्या बात है, ये साधु हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और विशेष रूप से मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब कोई कारण तो होगा। सहज मुस्कान हो तो बात अलग है। तो फिर सेठानी से बात होती है कि क्या बात है, ये वाले महाराज क्यों इतना मुस्कुराते हैं? तो बोले कि चलो अपन उनसे ही बात कर लें, क्या बात है। तो उनसे जब बात करते हैं तब मुनिराज बोलते हैं कि तुम्हारी उम्र 7 दिन की है और तुम 15 दिन बाद के सपने देख रहे हो, इस नादानी को देखकर मुझे हंसी आती है। फिर वो सेठ पूछते हैं कि दूसरी बार आप क्यों मुस्कुराए? तो बोले कि जिस लड़के को तुम गोद में बैठाल कर कुछ मीठी मीठी चीजें खिला रहे थे और बहुत अच्छी अच्छी भावनाएं भा रहे थे तुम उसके बारे में, तुम सोच रहे थे कि ये मेरा नाम रोशन करेगा और बहुत कुछ सोच रहे थे तुम, वो तुम्हारा पूर्व जन्म का शत्रु है और वो तुम्हें मिटाने के लिए यहां पैदा हुआ है। तुम्हें बर्बाद करने के लिए आया है। फिर पूछते हैं कि तीसरी बार? बोले तीसरी बार मैं इसलिए मुस्काया कि तुम एक बकरे को भगा रहे थे और मैं संसार की विचित्रता को देख करके मुस्कुरा रहा था कि जब वह बकरा तुम्हारा पिता था तब तुम उनके चरण छूते थे और आज पिता का जीव मर करके बकरा बन गया है तो तुम उनको उसको बकरे को भगा रहे थे। वो बकरा बार बार तुम्हारे पास ही आ रहा था और तुम्हें याद है कसाई ने पूछा था कि लगता है साहब ये बकरा आपको ज्यादा चाहता है, खरीदोगे? तुमने निष्ठुरता पूर्वक कह दिया था कि ले जाओ। वो बकरा तुम्हारे पिता का जीव था। बोले सेठ के रोंगटे खड़े हो जाते। वो भागता हुआ जाता है कसाई के पास। कसाई बोलता है कि देर हो चुकी है साहब, मैंने उसका कत्ल कर दिया। बोले तब फिर सेठ उनके पास वापस आता है मुनिराज के, बोले कि अब मैं क्या करूं, मेरा मन बिल्कुल टूट चुका है, अब मुझे संसार में कुछ भी सार नजर नहीं आता। आपने कह दिया कि 7 दिन में मेरी आयु पूर्ण होने वाली। तब गुरु कहते हैं कि रत्नत्रय से ही जीव का कल्याण होता है, अंतर मुहूर्त आयु शेष हो फिर भी अगर कोई रत्नत्रय धारण कर ले तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है, और पूर्व कोटि की भी लंबी आयु हो और विषय कषायों में बर्बाद कर दे तो मानवता का कोई मूल्य नहीं रह जाता। तब उस सेठ ने फिर दीक्षा ली। दीक्षा ली, 7वें दिन उसको पीड़ा हुई, लेकिन चूंकि वो दीक्षा ले चुका था उसने उस पीड़ा को सहन किया। संज्वलन का शायद देशघाती है, और देशघाती के उदय में आत्मा के गुण का पूर्णतः घात नहीं होता, इसलिए संज्वलन कषाय के उदय में मुनिराज परिषहों को जीतकर आत्म शांति को बरकरार रख सकते हैं। बहुत बड़ी रहस्य की बात ही है। सर्वघाती के उदय में क्या होता है कि अपने गुणों का पूर्ण घात होता है तो परेशानी हो जाती है। अगर वैसा कर्म उदय में आ जाए तो अपन उसको झेल नहीं पाते। सांत्वना मिलती है कभी कभी उपदेशों से, गुरु के सानिध्य से, शास्त्रों के स्वाध्याय से, लेकिन जो इंद्रियों पर और मन पर विजय प्राप्त की जाती है वो मुनि अवस्था में ही पूर्णतः संभव हो पाती है। तो फिर उसने दीक्षा लेकर के जब उस परिषद को सहन किया और गुरु महाराज ने कहा कि अब तुम्हारा समय आ गया है, मैं नमोकार मंत्र सुना रहा हूँ, तुम ध्यान एकाग्र करो, क्योंकि मूलाचार में एक गाथा है कि मरण काल में जीव की क्या दशा होती है। आत्मचिंतन करना तो बहुत दूर की बात है, मरते समय जो अवस्था बनती है जीवों की उसमें ये लिखा, बृहत प्रत्याख्यान संस्तव अधिकार, दूसरा अध्याय है मूलाचार का, उसमें एक गाथा आती है, नहीं तम्मी देश आले सक्को बारस विहो सुदखंदो सब्वो अणुचिंते दुम बलिणावि समत्थ चित्तेण सत्तखर सज्झाणम अरहंताणम नमोत्ति भावेण जो कुणदि पयड मदि सो पावदि उत्तमम ठाणम। बहुत सुंदर बात और बहुत गंभीर अद्भुत बात। क्या कह रहे हैं आचार्य भट्टकेर स्वामी कि उस काल में, संलेखना के काल में, मरण काल में श्रुत केवली जैसे महामुनि और वचन बल रिद्धि के धारक साधु भी, काय बल के धारक मुनि भी, जो इस उंगली पर तीनों लोक को उठा सकते हैं, इतनी क्षमता जिनके पास है, वो भी द्वादशांग का चिंतन नहीं कर पाते। यानी जिनवाणी का जो चिंतन है उसमें असमर्थ हो जाते हैं। तब उस समय, संलेखना के समय, उनका कल्याण कैसे हो सकता है जो जिनवाणी का भी चिंतन करने में समर्थ नहीं है। आचार्य कहते हैं सत्तखर सज्झाणम, पूरा नमोकार मंत्र भी कठिन लगने लग जाता है, इतनी शिथिलता आ जाती है। आचार्य कहते हैं कि कोई बात नहीं, सत्तखर सज्झाणम, सिर्फ सात अक्षर पकड़ लो नमोकार के, अरहंताणम नमोत्ति भावेण, भावेण, भाव का अर्थ क्या है, लोग भाव का अर्थ एकाग्रता लेते हैं ना, वो अर्थ नहीं है। माला फेरते समय मेरे भाव नहीं लगते, मन भटकता है, भाव नहीं लगते मत कहो, मन भटकता है ऐसा कह सकते हो। मन भटकने का अर्थ अस्थिरता है, चंचलता है, लेकिन भाव कोई दूसरी वस्तु है। भाव का अर्थ होता है श्रद्धा, भाव का अर्थ होता है आस्था, समर्पण। इसलिए माला फेरते समय मन नहीं लगता है ये अलग बात है, भाव नहीं लगता तो फिर आप माला ही नहीं फेरोगे। अगर आपकी श्रद्धा ना हो तो माला क्यों फेरोगे, भाव लगता है। इसलिए माला फेरना चाहिए, चाहे मन भटके माला जरूर फेरना चाहिए, क्योंकि उस श्रद्धा से काय योग तो आपका ठीक है ना, शरीर से तो ये उंगलियां दाने को खिसका रही है, और वचन में भी आप मंत्र का तो उच्चारण कर ही रहे हैं, बीच बीच में मन इसमें भी आता है बाहर भी चला जाता है, जितनी बार आता है उतना तो एफडी हो रहा है। वो दृष्टांत आपको याद हो, तीर्थ क्षेत्र के पास एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, भयंकर एक्सीडेंट, 9 लोग मर गए उसमें, 2 लोग जिंदा बच गए। फिर निमित्त ज्ञानी से पूछा गया कैसे बचे, तो बोले इसने 14 वर्ष पहले दोपहर को नमोकार की माला फेरी थी और उसके 44वें दाने का पुण्य उदय में था एक्सीडेंट के समय, उस पुण्य ने इसको जीवन दान दे दिया। और ये दूसरा कैसे बचा, तो बोले इसकी माँ भोजन नहीं करा रही थी, बोले दर्शन करके आ फिर भोजन करने मिलेगा। तो ये चला गया जबरदस्ती दर्शन करने के लिए, और दर्शन करते समय इतनी अच्छी पूजा चल रही थी। अब अच्छी पूजा का मतलब सब लोग व्यवस्थित बैठ करके, जो भक्ति प्रधान पूजा है, अभी तो ज्ञान प्रधान पूजाओं का जमाना आ गया है, और फिर उसमें भक्ति तो गौण हो गई है और कहीं लुप्त भी हो गई कह सकते हैं। उसमें सिर्फ आत्म गुणों का और फिर निश्चय से जो स्वरूप है वो सर्वथा अनुचित नहीं है, पर स्थान पर अपन ध्यान दे तो पता चलेगा कि उसके लिए सामायिक का स्थान है। जहां ज्ञान प्रधान भावना होती है उसको आप सामायिक में करो ना, सामायिक करते नहीं और पूजा में सब इतनी लंबी चौड़ी बातें करते। पूजा में तो भगवान का ही गुणगान होना चाहिए। जब कभी भगवान के सामने किसी को ऐसा वाक्य बोलते हुए सुनते हैं, भगवान के सामने कैसे बोले जा सकते ऐसे वाक्य, आप कल्पना करो ना। अगर आपके अंदर यथार्थ भक्ति है तो क्या भगवान के सामने आप अपनी तारीफ कर सकोगे? अपनी तारीफ छोटे के सामने की जा सकती है कि बड़े के सामने? नहीं, ये सबको विचार करने की बात है। ये वैसा मत समझना आपके मतलब जैसे भवन में जी भर घूम चुका वहां ताली बजा रहे हैं आप, ऐसा नहीं कि इस प्रसंग में आपके हंसने की बात नहीं है। ये इस पर रोना आना चाहिए कि मैंने कितनी बार भगवान की घोर अभिनय की है ऐसी चेष्टा के द्वारा। और अगर आपके अंदर गंभीरता नहीं है तो करते रहो मौज मस्ती, जो आपकी मर्जी में आए करो, कौन रोक सकता है। भगवान के सामने ये कहना भव आताप मिटावन की निज में ही समता क्षमता है, ये कथन सर्वथा असत्य तो नहीं है, ये बिल्कुल पक्की बात है। लेकिन भगवान के सामने कह लेना एक बात नहीं है, ये याद रखना। आपको शॉर्टकट चाहिए ना, आप किसी कवि को पैसे दे करके अच्छे पूजा लिखवा लीजिए भगवान की, लेकिन ऐसी पंक्तियां भगवान के सामने बोलना जिसमें अपनी शक्ति का बखान हो, वो हो सकता है किसी नए से किसी दृष्टि से आपको उचित लगता हो, और अगर किसी अपेक्षा से उचित हो तो फिर हम रोक नहीं सकते आपको। लेकिन अभी तक हमें वो चीज़ समझ में नहीं आती। अगर आचार्य शांति सागर महाराज जी के सामने कोई कहे कि महाराज मैंने 3 उपवास किए, उनने 9338 उपवास किए आचार्य शांति सागर महाराज ने, उनके पास जाकर के कोई कहे कि मैंने 3 उपवास किए महाराज, मैं 3 उपवास कर लेता हूं, कैसा लगेगा विचार करो आप। जिन्होंने घातिया कर्मों का क्षय कर डाला, अभी अपने भव्य और अभव्य का ठिकाना नहीं है। सोचो, विचार करो जरा सा, और अपन भगवान के सामने क्या बोल रहे हैं? क्या वो चीज अपने बोलने लायक है भगवान के सामने, जो साक्षात घातिया कर्मों का नाश करके वहां विराजमान हो गए हैं? उनके सामने अगर अपन ये बोले कि भव आताप मिटावन की, ये देखो नए दृष्टि से ये कथन गलत नहीं, इसको हम सर्वथा असत्य नहीं मानते, लेकिन कहां बोलना इसका विवेक अपने को रखना चाहिए। और भक्ति तब तक प्रकट नहीं हो सकती जब तक आप भगवान को सब कुछ और अपने को कुछ नहीं नहीं मानते। ये चीज आनी चाहिए वहां, पर्याय दृष्टि अगर आप नहीं लाते भगवान के सामने, वहां अगर आप द्रव्य दृष्टि की बात करते हैं तो फिर द्रव्य दृष्टि से तो भगवान में और अपने में कोई फर्क नहीं है, और जिसमें कोई फर्क नहीं होता उसके प्रति कभी भक्ति, आपको कभी अपने सहपाठी के प्रति भक्ति भावना आई? कभी अपने क्लास फेलो के चरण छुए आपने, नमस्कार तुम्हें, अब तुम तो क्या, ऐसा किया क्या कभी आपने? ऐसा संभव ही नहीं है। आप सामायिक में विचार करो ना कि आत्मा सिद्ध के समान है, सामायिक करते नहीं कभी। सामायिक का नाम लो तो फिर बुखार चढ़ जाता है कि अरे बनता नहीं, बैठते नहीं बनता, हमें तो 5 मिनट में घुटने दर्द करने लग जाते। चलो कोई बात नहीं, नहीं बनता बैठते, तो फिर यहां जो पूजा कर रहे भगवान की, पूजा में पूजा के वाक्य बोलो, सामायिक वाले वाक्य पूजा में मत बोलो। आ रहा है समझ में? सामायिक में आप शुद्ध स्वरूप का भरपूर चिंतन करो ना, कौन रोकता है? आप 6 बार करो सामायिक, 3 बार के बजाय, मना थोड़ी है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा है कि वैसे तो सामायिक शिक्षा व्रत धारण करने वाले को 2 बार नियम से करना चाहिए सामायिक, सुबह और शाम को, लेकिन अगर दोपहर को कर ले, रात को कर ले, या फिर और कभी कर ले, तो इतरत्र पुनः समय न कृतं दोषाय तद गुणाय कृतम। बोले उससे आपके गुण ही बढ़ेंगे, आपको दोष नहीं लगेगा। तो भगवान के सामने कैसी पूजा करना, प्रथम देव की पूजा ठीक लगती है, और भी जो पुराने कवियों की पूजा है, जो भक्ति प्रधान है, वो पूजाएं ठीक लगती है, क्योंकि उसमें भगवान बड़े लगते हैं और अपन छोटे लगते हैं, तो अपने को छोटा ही रहना चाहिए भगवान के सामने, भगवान की बराबरी नहीं करना चाहिए। भगवान के सामने अगर आप कहो उज्ज्वल हूं, कुंद धवल हूं, प्रभु पर से न लगा हूं किंचित भी, तो बस इतना बोलने के बाद थोड़ा खामोश होकर सुनना कि वहां से क्या जवाब आता है। आप एक वाक्य बोलना, उज्ज्वल हूं, कुंद धवल हूं, प्रभु पर से न लगा हूं किंचित भी, फिर क्षण भर के लिए शांत होकर सुनना वहां से क्या आवाज आती है। वहां से एक आवाज आएगी, फिर बेटा वहां क्यों खड़ा है, यहां बैठ जा मेरे बाजू में। अगर तू पर से किंचित भी नहीं लगा, तू वहां क्यों खड़ा, मेरे पास बैठ जा ना। जो पर से मुक्त हो जाता है वो परमात्मा होता है, जो पर में लगा रहता है वो आत्मा होता है। तो इतना फर्क, इतना विवेक तो होना चाहिए ना। तो इसलिए पूजा करते समय ये सारी बातें, ये कितने भजन बना लिए, लय में आप लीन हो जाते हैं और फिर वही बात हो जाती, मतलब क्या बोल रहे हैं इसका होश नहीं है। सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या, बताइए आप, इसमें ताली बजाने की क्या बात है। अशरण मृत काया में हर्षित नव जीवन डाल सकेगा क्या, ताली बजाने की चीज है क्या, क्या बताया जा रहा वहां? वहां कुछ और ही बताया जा रहा है, वहां कुछ वैराग्य की बात चल रही है और यहां तालियां बज रही है। श्मशान में कभी तालियां बजती? अब देखो वो फोटोग्राफर्स और फिर सारे शूटिंग करने वाले लोग तो आ सकते हैं वहां पर, उनको मना नहीं है, लेकिन जैसे ही वो बेटा पिता की चिता में आग देता है, वो खूब अच्छे से फोकस करके वो दृश्य कैप्चर करता है। जैसे राजीव गांधी का जब हुआ था अंतिम संस्कार, तब वो बेटा कौन था उनका, राहुल, जब चिता को संस्कार, पूरे कैमरा उस पर फोकस थे, टेलीविजन पर भी वो सब चीजें दिखाई गई होंगी, पर उस समय सबने तालियां बजाई थी क्या? वो ताली बजाने का प्रसंग ही नहीं था। तो जिसको प्रसंग का विवेक नहीं है, उसको अपन जैनत्व का मर्मज्ञ नहीं मान सकते, और जैन धर्म का मर्म जिसको पता है वो कभी भी अप्रासंगिक क्रिया नहीं कर सकता। अप्रासंगिक क्रिया मतलब पूजा के समय भक्ति प्रधान पूजा करना, सामायिक के समय ज्ञान प्रधान आत्मचिंतन करना। ऐसा नहीं है कि उसको निकाल ही देना जीवन से। उज्ज्वल हूं, कुंद धवल हूं, इस वाक्य को समुद्र में सिरा देने की बात नहीं है, उसका भी अपने को सदुपयोग करना है, लेकिन कहां पर, जहां उसका प्रसंग हो वहां पर, और जहां इसका प्रसंग हो भक्ति का वहां पर। भक्ति में अगर सही पूजा करना हो आपको, तो फिर पूजा में कभी भी जिस वस्तु की आप निंदा कर रहे हैं वो अर्पित मत करो। निंदनीय वस्तु भगवान को नहीं चढ़ाई जाती, श्रेष्ठ वस्तु ही अपने आराध्य के चरणों में अर्पित होती है। ये नियम है। आप मेहमान आते हैं उनको आप बासी रोटी खिलाते हैं क्या? ये लीजिए लड्डू, एक हफ्ते पहले ही बनाया, लीजिए साहब, ऐसा कर देंगे? या फिर गर्मा गर्म ताजी वस्तु खिलाते हैं, अगर आइसक्रीम होगी तो ठंडी खिलाओगे वो बात अलग है, लेकिन कैसी वस्तु देते हैं आप जिससे आपको स्नेह है उसके लिए आप क्या अर्पित करते हो? इतना विवेक रखो। ये तो मालूम है आपको, जैसे बेटा हॉस्टल में रहता है